इसीलिए भरतियर हमने अभी अभी गीता के 18वें अध्याय के श्लोक किए, चौथे श्लोक कर लिए, लेकिन प्रसंग बस मुझे बीच में से उठना पड़ा। अब मैं आपको, कल हमने आत्मनिवेदन के विषय में किया था कि आत्मनिवेदन क्या है और वो आत्मनिवेदन कैसा होना चाहिए। कल हमने देखा था कि आत्मनिवेदन में हमारी बुद्धि भी, हमारा मन भी, प्राण भी, इंद्रियां भी, नर्वस सिस्टम भी, स्नायु, मतलब सब कुछ। अगर हम हमारी आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है तो हमें अपनी आत्मा का निवेदन केवल बोलने से नहीं कर पाएंगे, हमें अपने सब अंतरात्मा से लेकर मन, इंद्रियां, इच्छा शक्ति, प्राण, शरीर, मतलब प्रत्येक जो हमारे शरीर से जुड़ा है, शरीर है, ये सब भगवान के प्रति निवेदित कर लेना चाहिए। अब आज अगला प्रसंग हमने यहाँ तक किया था कल, मन और हृदय को अपनी चेतना का केंद्र बनाकर व्यक्ति को साधन बनाना होगा। प्रायः ये समझा जाता है कि संसार का कार्य व शक्तियाँ भगवान से संबंध नहीं रखते या फिर भगवान के विरोधी है। वे भी समझा जाने लगा कि जीवन का माया के वश में होना तथा आत्मा का शुद्ध ब्रह्म सत्ता में कारगर होना दोनों में किसी प्रकार का मेल नहीं बैठता। इसलिए पार्थिव जीवन से संबंध रखने वाली वस्तुओं से मुंह मोड़कर सीधे आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचा जाए। बीच में एक ऐसा समय आया लोगों के जीवन में, ऐसा कुछ सोचने को मिला कि उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि भगवान से संबंध में संसार के काम जो हैं और संसार के प्रति जो हम शक्ति लगाते हैं, ये और भगवान आपस में विरोधी हैं। अगर हम वो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। वे भी समझा जाने लगा कि जीवन का माया के वश में होना, कि हमारा जीवन जो है तो माया के वश में है और आत्मा शुद्ध है, इसलिए ये मेल नहीं बैठता कि जीवन जो है वो तो माया का है लेकिन आत्मा तो शुद्ध ब्रह्म सत्ता से में है। तो फिर इन दोनों को कैसे बिठाएं, एक दूसरे से नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गए, अपोजिट हो गए। इसलिए पार्थिव जीवन से संबंध रखने वाली वस्तुओं से मुंह मोड़कर सीधे आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचा जाए। ऐसे समय में कुछ लोग बिल्कुल ही संसार को छोड़ करके सीधे हिमालय की ऊंचाइयों में जाकर तप और त्याग में लग गए, तपस्या में लग गए। इस प्रकार की एकाग्रता का एक लाभ ये है कि हम पूर्ण रूप से आत्म निवेदन के योग्य बन जाते हैं। कहते हैं इसका फायदा भी बहुत है, लाभ भी बहुत है कि हम सब को छोड़ करके कहीं चले जाएं और अपनी आत्मा को भगवान की आत्मा से जोड़ दें, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि हमें इसी जमीन में, इसी भूतल पर, इसी शरीर में देवादिदेव भगवान को प्रकट करना है। लेकिन एक दूसरा दर्शन ये कहता है कि घर बार नौकरी जो भी छोड़ करके हिमालय में जाने का एक रास्ता है, लेकिन दूसरा रास्ता ये भी है कि हम इसी शरीर में जैसे हम हैं और इसी भूतल पर जहाँ हम रहते हैं और जो कुछ हमारे पास साधन है उसी से हम भगवान को प्रकट कर पाए। इससे हमें क्या करना है कि हमें भगवान की महिमा को और उनकी मधुरमा को क्या करना है, अपनी चेतना में लाना है, भगवान को अपने भीतर लाना है। योग के जीवन को स्वीकार करने के लिए कठिनाई सहन करनी पड़े तो घबराना नहीं चाहिए, है ना। जब हमें योग करना है, भगवान से जुड़ना है, तो कोई भी कठिनाई आ जाए हमें दुख घबराना नहीं चाहिए। जड़ सत्ता को भी संघर्ष में बिजी होकर पूर्णता की प्राप्ति में सहायक बनना पड़ता है। कहते हैं जब हमें आत्मवेदन करना है अथवा पूर्णता की प्राप्ति करनी है तो ये जो कुदरत है इस सत्ता को भी प्रकृति को भी हमारा सहायक बनना होगा। हमारे ऊपर चारों ओर चेतनाओं के अन्य स्तर भी हैं, केवल चेतना एक ही नहीं है, इसके और डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्तर हैं। जैसे एक मन है, एक प्राण है, एक बुद्धि है, एक अहम है, अहम ईगो मैं, ये बहुत स्तर हमारे जीवन में है और इन्हीं स्तरों से हमारा जीवन पोषित होता है। इसलिए क्या होता है कि हमारे मोक्ष में कठिनाई पड़ती है क्योंकि हम विषय की शक्तियों के प्रति आसक्त है और उनके दास हैं। ये क्यों कठिनाई पड़ती है? क्योंकि हमें लगता है कि जितनी भी संसार में शक्तियां हैं बहुत बड़ी ऊंची ऊंची हैं और हम उनमें आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और उनके दास बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा है कि हमारे अंदर की प्रधान मानसिक शक्तियों में से किसी एक को भगवत प्राप्ति के साधन रूप में चुन लिया जाता है। कई बार कई साधक क्या करते हैं कि मन की जो प्रधान जैसी शक्ति है, तो किसी का भाव है, किसी का ज्ञान है, किसी का कर्म है, तो दो को छोड़ के एक को ले लेते हैं और उसी को भगवान के रूप प्राप्त करने का साधन बना लेते हैं, शेष सभी को वो नकार देते हैं। जैसे भक्त भाव में सत्ता की शक्तियों का हृदय की तीव्र उंगलियों को अधिकार मिलाकर ईश्वर प्रेम में निमग्न रहता है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं बस केवल भक्ति ही करते रहते हैं। जैसे हमने वृंदावन की भक्ति देखी, वो दूसरी बातों के विषय में सोचते नहीं कि हमारे पड़ोस में कौन भूखा है, कौन नंगा है, या कौन हमारे मित्र कैसे हैं, उनको कोई दुख तो नहीं। नहीं, नहीं। उनको केवल अपनी भक्ति में इतने भाव में हो जाते हैं कि वो अपने ईश्वर के प्रेम निमग्न रहते हैं। तो उन्होंने हृदय के एक भाव को तो ले लिया लेकिन बुद्धि को छोड़ दिया। लेकिन ये विचारों की हर चल के प्रति उदासीन रहता है। विचार क्यों? बुद्धि, बुद्धि से विचार बनता है तो जो विचार आते हैं उनके प्रति वो सोचते ही है, बुद्धि के आग्रहों को पीछे छोड़ देता है तथा तो मन की पिपासा की परवाह नहीं करता। तो ऐसा साधक क्या करता है? ना बुद्धि को पकड़ता है ना मन को। मन में कई प्रकार की पिपासा होती है, प्यास होती है, लेकिन ध्यान नहीं देता। वो कर्म करने के किसी संकल्प में उसे मतलब नहीं, ना ही वो कर्म करता है। वो कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना चाहता या नहीं करता। तो बात ये बताते हैं आत्मनिवेदन में कि एकांगी आत्मनिवेदन होगा। हृदय तो कर दिया निवेदित, लेकिन मन ने किया, बुद्धि ने की, ज्ञान वाले मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक विवेक शक्ति तथा मनन चिंतन में लीन रहकर मन के अंतर्मुख चिंतन में स्वतंत्र लाभ करता है। अब ज्ञान की पहले हृदय की बात थी और भक्ति की बात थी, अब है ज्ञान की बात। ज्ञान जिसमें विवेक होता है, जिसमें मनन होता है, ऐसा मनुष्य ज्ञानवान मनुष्य क्या करता है कि अपनी इच्छा से अपनी विवेक शक्ति को जागृत करके मन से चिंतन करता है और मन को अंतर्मुख करके भगवान का चिंतन करता है। वह आत्मा का एकाग्र चिंतन करता है, भी एकाग्र हो गया कि उसने ज्ञान को तो ले लिया लेकिन हृदय को नहीं छुआ, बुद्धि को ले लिया और अपने सूक्ष्म विवेक से प्रकृति के माया प्रपंचों में भी आत्मा की शांत उपस्थिति को पहचानने में समर्थ नहीं होता है। कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो है अपने सूक्ष्म विवेक से प्रकृति के माया प्रपंचों में आत्मा की शांत उपस्थिति को पहचानने में समर्थ नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें हलचल है तथा विचार द्वारा प्रत्यक्ष अध्यात्म अनुभव भी नहीं करता है। से आ गया ज्ञान, पहले था भक्ति। संसार में आने वाली कठिनाइयों में कठिनाइयों के विरुद्ध वे आध्यात्मिक एकांत की मजबूत दीवार खड़ी करके उनका निवारण करता है। क्या करता है मनुष्य? जो हमें संसार से कठिनाइयां आती है हमारे सामने, वो उसको दूर करने के लिए एक दीवार बना लेता है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कि हमें एकांत चाहिए, लेकिन पूर्ण योग में ऐसा एकांत वास चाहे वे बाया हो या आंतरिक केवल एक प्रसंग हो सकता है। अब यहाँ पर भी क्या माना गया कि जो पूर्ण रूप से आत्म निवेदन करता है तो उसके लिए एकांत वास भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर पूरा आत्म निवेदन नहीं हुआ, वो अपने आप को एकांत में ले गया, क्योंकि पूर्ण योगी अपने समस्त भार को स्वीकार करते हुए जगत का बहुत सा भार वहन करता है। अब बात आ गई पूर्ण योगी की, हमने देखा पहले जो हृदय से सुगमित भक्त योग धरती करते हुए जो योगी बनता है भगवान से जुड़ने वो एकांगी है, जो ज्ञान वो भी एकांगी है, जो कर्म करता है वो भी एकांगी है। हमें तो पूर्ण रूप से भगवान से जुड़ना, अपना मन भी, अपनी बुद्धि भी, अपना प्राण भी और अपना दिल भी हुए देव, क्योंकि पूर्ण योगी अपने समस्त भार को स्वीकार करते हुए जगत का वो सब भार बहन। पूर्ण योगी की क्या लक्षण बताया कि वो अपने आप को तो भगवान से जोड़ता ही है, लेकिन संसार का भार संसार का उत्तरदायित्व भी संभालता है, व्यष्टिगत के साथ साथ समष्टिगत भी होता है। तो ये जैसे हमने अभी पढ़ा कि भक्त ज्ञानी कर्मी ये एकांगी होते हैं कई बार, लेकिन जो पूर्ण योगी होता है वो अपने व्यष्टिगत हुआ इंडिविजुअल और समष्टिगत हुआ समस्त वसुधैव समस्त सृष्टि के साथ संबंध जोड़ करके अपनी आत्मा का निवेदन करता है। वह श्रद्धा प्रेम और शक्ति का समन्वय करते हुए आत्मा की निष्क्रियता को दिव्य क्रियाशीलता में बदलता है। तो योगी कह सकता है कि उसके मन में श्रद्धा भी होती है, प्रेम भी होता है, वो साथ साथ जो संसार है उसके साथ वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करता रहता है, और उसी के दौरान में वो आत्मा जो निष्क्रिय मानी जाती है उसको क्रियाशील बना देता है, जो दूसरों की कठिनाइयों में कहने का अर्थ है भाग लेता है, उनको दूर करने में सहायता करता है तथा असंख्य कठिनाइयों के ऊपर विजय प्राप्त करता हुआ दिव्य पूर्णता को प्राप्त करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कौन करे ये झंझट, भक्त बन जाओ है ना, कर्मी बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, लेकिन आत्म निवेदन क्या कहता है, आत्म निवेदन कहता है कि नहीं, हमें पूर्ण रूप से आत्म निवेदन कर देना है ताकि हम भगवान को अपने भीतर देख पाए और साथ ही साथ संसार का भला भी कर सके। इसके लिए हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपने महाराज जी का, स्वामी जी का, जो पूर्ण योगी रहे, पूर्ण योग के वो मालिक थे, स्वामी थे, राग द्वेष उनको छू नहीं गया था, वो एक भक्त थे जिनका हृदय भगवान के लिए रोता था, वो एक ऐसे कर्मी थे जिन्होंने संसार के लिए एक विशाल महादेवी तीर्थ लिया और वो भी अपने हाथों से चट्टानों को तोड़ तोड़ देते, और वो ज्ञानी थे, वो जानते थे कि एक आत्मा ही, एक परमात्मा ही सब में वास करता है, इसके सबसे पूरा सुंदर रूप से समान व्यवहार करते थे। तो ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे दृष्टांत देखने को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन पूर्ण योगी ऐसा ही होना चाहिए, पहले अपने आप को भगवान से जोड़े, पूर्ण आत्म निवेदन करे, फिर संसार के हित के में लग जाए। पूर्ण योग में आत्म निवेदन के लिए एकाग्रता आवश्यक तत्व है, ये तो ठीक है कि आत्म निवेदन करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड चाहिए ताकि हम संसार की चकाचौंध में कहीं इधर उधर गुम ना हो जाए या फंस ना जाए, लेकिन ये एकाग्रता एकांगी न होकर सर्वांगी होनी चाहिए, जिसका अर्थ है अपनी संपूर्ण सत्ता को भगवान की ओर लगाना तथा उसी में तन्मय हो जाना। इसलिए पूर्ण योगी क्या करता है कि अपने सारी सत्ता को, चाहे वो मन की है, चाहे वो तन की है, चाहे बुद्धि की है, चाहे हृदय की है, सब कुछ भगवान से ही जोड़ देता है सब सत्ता को। पूर्ण योगी उस भगवत चेतना को पाने का अभिलाषी होता है जो विश्व में काया करती है, जो पूर्ण योगी है वो कहता है मैं तो उससे संबंध जोड़ू, उसको देखूंगा, उसके पास जाऊंगा, उससे बातचीत करूंगा जो सारे संसार को देखता है। लेकिन संपूर्ण सत्ता को एक साथ भगवान में केंद्रित कर देना कोई आसान काम नहीं है। फिर साथ ही कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कुछ भी हमारे साथ जुड़ा है वो हम भगवान से जोड़ दें। लेकिन कहते हैं ये काम बहुत कठिन है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, केवल प्राणी जीव नहीं है, केवल ऐसा नहीं है जैसे कि होते हैं पशु में प्राण है घूम रहे हो, लेकिन मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहता है, समाज के नियम उसको मानने हैं, नियम मानने हैं, समाज को देखना है, आवेगों को सीमित मर्यादित करने के लिए चिंतनशील मन वृद्ध इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। उनके समाज में रहना तो मर्यादित जीवन चाहिए, सीमित चाहिए, और चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें चिंतन करना होगा, हमारा मन चिंतनशील होना चाहिए और हमारी वीर पावर भी बड़ी संत के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है तभी वह इसमें सफल होता है। अगर वो ऐसा चाहता है मनुष्य कि मैं समाज में रहते हुए अपने इच्छाओं को अपने आवेगों को मर्यादित और सीमित करूं तो क्या करना होगा, हमें हमें सीधे डायरेक्ट भगवान से अपना संबंध जोड़ना है, ना कि दुनिया से संसार से, तथा अपनी भगवत यात्रा की ओर अग्रसर होना है, तथा अपना मन और हृदय दोनों को अपनी चेतना का केंद्र बनाकर पृथ्वी को साधन बनाना होगा। कहते हैं तथा अपनी भगवत यात्रा की ओर अग्रसर होता है कौन मनुष्य, जो अपने को अनंत के साथ जोड़ लेता है और मन और हृदय को अपनी चेतना का केंद्र बना लेता है, केंद्र बना लेता है, मन और हृदय को उनको बाहर नहीं जाने देता, अपने से बाहर न मन भटकता है न हृदय बड़ा ही भावुक हो जाता है। और फिर ये जो संसार है प्रकृति है कुदरत है इसको वो साधन बना लेता है, इंस्ट्रूमेंट बना लेता है ताकि वो अपनी संपूर्ण सत्ता को भगवान के आगे निवेदित कर दे। इसलिए करते हैं वो ये सब भगवान की ओर जाने के लिए, अगर वो ये नहीं करता है तो भगवान की ओर नहीं जा पाते हैं। इसलिए हमको अपना मन अपना हृदय अपनी बुद्धि सब कुछ सीमित रख करके भगवान की ओर जाना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। योग का शीलनेश तभी होता है जब हमारे विचार भाव और कर्म एक साथ भगवान की ओर मुड़ते हैं। फिर इसी पर स्ट्रेस देते हैं कि योग का आरम्भ कब होगा, जब हम अपने विचारों को हम पहले आया बुद्धि को भाव आया हृदय को और तथा कर्म आया अपने कर्म के साथ भगवान की ओर मुड़ते हैं, मतलब तीनों को लेने हमको, जब भगवान जब हमने अपना मान लिया आज तक हमें पता नहीं था कि भगवान हमारे जीवन का उद्देश्य है, एक एक हमें किसी साधु संत से पता चला जैसे हमारे जीवन में होता है हुआ है कि हमने जब कहीं से ग्रंथों में पढ़ लिया साधु संतों के भाषण सुन लिए घर में माता पिता को देखा हमने तो हमारा मन भी किया कि हम भी भगवान की ओर जाए भगवान से जुड़े योग को आरम्भ करें। तो क्या हुआ जब हम कब हम योग की ओर मुड़ते हैं, कब मुड़े हम, जब हमारी बुद्धि हमारे विचार हमारा हृदय हमारे भाव और जो कर्म हम करते थे चाहे हम पढ़ाते थे चाहे हम पढ़ते थे चाहे हम घर का काम करते थे या समाज का सब कुछ हमने जब भगवान की ओर मोड़ दिया तो क्या हुआ तो योग आरम्भ हो गया। मन हृदय बुद्धि सब कुछ भगवान पर केंद्रित करें, पर कैसे, क्योंकि हम उसे जानते नहीं तथा जब तक हमारी पूर्ण एकाग्रता नहीं होती तब तक हमें भगवान का ज्ञान नहीं मिलता। कहते भैया तो ठीक है योग में कंसंट्रेशन ऑफ माइंड तो आवश्यक है, सब कुछ भगवान पर केंद्रित कर दो अपना मन भी अपने हृदय भी अपनी बुद्धि भी, तो कैसे करें प्रश्न पैदा होता करने को तो सभी बोलते हैं। इसलिए हमको भगवान को जानना होगा, जब तक हम भगवान को जानते नहीं तो पूर्ण एकाग्रता भी नहीं होती, तब तक हमें भगवान का ज्ञान भी नहीं होता। अतः योग में एकाग्रता इस प्रकार साध्य होती है कि हम अपने तथा दूसरों के भीतर भगवान की जीवंत उपस्थिति का अनुभव करें। देखो कितना सुंदर रास्ता बताते हैं कि योग में एकाग्रता कब होती है कि हम अपने तथा दूसरों के भीतर भगवान ही दिखें। सियाराम में सब जग जानी है ना। संत कहते हैं कि सब में भगवान को ही देखो, दूसरों के भीतर भगवान की जीवंत उपस्थिति का अनुभव करें, अपने में भी और दूसरों में। तथा अनुभूतियाँ एक चीज है और साक्षात्कार एक चीज। अनुभूतियाँ कि हमने अनुभूत किया, रियलाइज किया कि जो मैं हूँ वही तो दूसरा है, मेरी आत्मा उसकी आत्मा एक ही है। और फिर इसके साथ दूसरा बताते हैं साक्षात्कार भी, मतलब हम एक दूसरे के साथ आमने सामने होकर अपने मन बुद्धि को मिलाएं, एक दूसरे के साथ साक्षात्कार करें। मेरी आत्मा की पुकार के प्रति साधक जागरूक हो जाए और अंत की गहराई से आत्म निवेदन करे। आत्मा पुकार करती है कि मैंने भगवान से जुड़ना है, हमारी आत्मा कहती है, लेकिन हम साधक जागरूक नहीं होते, हमें पता ही नहीं चलता कि आत्मा क्या चाहती है। हम बार बार से हमारी बुद्धि हमारा भाव क्या चाहते हैं उसी में फंस जाते हैं। और अंत की गहराई से वो कहता है कि अगर आत्म निवेदन हम पूर्ण अंदर से करें, आत्मा से करें, तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए या भाव या विचार जो कि इसके विरुद्ध जाए, बल्कि ऐसे हो जाते हैं वो सारे कर्म और भाव और विचार कि वो भी आत्मा के निवेदन में सहायता देते हैं। विचार और बल जितना सघन और विशाल होगा, आत्म निवेदन उतना ही पूर्ण होगा। जिस व्यक्ति का विचार बुद्धि और बल हिम्मत जितना अधिक होगा, विशाल भी होगा गहरा भी होगा, तो आत्म निवेदन भी उतना ही परिपूर्ण होगा। अतः हमें अपनी दृष्टि उस भगवान पर केंद्रित रखनी होगी जिसमें भूत मात्र गति करते हैं तथा निवास करते हैं। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हमें अपनी दृष्टि को भगवान पर लगाना होगा। कोई हमारी दृष्टि का केंद्र बिंदु कोई और बने न हमारे जीवन में, केवल भगवान बने। कौन सा भगवान? जिसमें प्रत्येक जीव गति करता है तथा निवास करता है। भगवान का विराट रूप देखिए, विराट रूप में भगवान दिखाते हैं अर्जुन को कि देखो जो कुछ है वो सब कुछ मेरे में ही समाया हुआ है। भगवान का एक मुख निकल रहा है और दूसरे मुख से वो लोग निकल गए हैं। भगवान के अस्तित्व को हमें बौद्धिक रूप से नहीं समझना है। कुछ लोग बुद्धि से समझने का प्रयत्न करते हैं, डिस्कशन करते हैं भगवान कैसा है, लेकिन नहीं, अगर हमें पूर्ण योगी बनना है, आत्मनिवेदन करना है, तो बुद्धि को पीछे छोड़ देना है, ना ही उसे तर्क का विषय बनाना है, डिस्कशन नहीं करनी है। हमें तो अपने अंदर उसका साक्षात्कार करना है। क्या करना है? उसको अपने भीतर देखना है भगवान को, क्योंकि वह एकमेव है और मूल है और विश्वव्यापी आनंद है। भगवान क्या है? भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हमने जा करके मिलना है। वो तो अपने में एक प्रकाश है, वो एक चेतन है, वो एक विश्वव्यापी आनंद है। तो उसको हमने प्राप्त करना है या उसको उसके प्रति हमारा आत्मनिवेदन होना चाहिए। और वो भगवान क्या करता है? जिसने इस जगत को बनाया, सारे संसार को बनाया है, और फिर भी वो इससे आगे है, परे है, पारलौकिक है। वह एक में अनंत चेतना है, वो एक ही है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। और वो चेतना जो है, जो एक ही चेतना है, वो सभी चेतनाओं को, हमारी और तुम्हारी, पशुओं की, मानव सबकी चेतना को जोड़ती है। वह एक में असीम है जो समस्त कर्म अनुभव धारण करता है। भगवान को बताया कि वो एक है, मूल है, विश्वव्यापी है, जिससे सारा जगत बना है, फिर वो जगत से परे है, वो अनंत है, उसकी चेतना अनंत है, वो सब चेतनाओं को वह गठन करने वाला भी है। जिसका हृदय भगवान को प्रीति मानकर उसके प्रति आत्म वेदन करके आनंद में निवेदन हो जाता है, उसके दुख क्लेश मिट जाते हैं, उनका भ्रांतिशील अहम समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि जिन्होंने भगवान को अपना प्रेमी मान लिया और अपने हृदय को भगवान में लगा लिया, तो उस मनुष्य को तो बहुत आनंद ही आनंद मिलता है, उसके सारे दुख क्लेश खत्म हो जाते हैं। और यहाँ तक कि उसका उसकी भ्रांतियाँ तथा उसका ईगो जो है वो भी समाप्त हो जाता है। प्रेत बल और स्वयं प्रकाश मान शक्ति है भगवान, तो इंडिविजुअल नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वो तो क्या है, वो हमें प्रेरणा देने वाला बल है और अपने में स्वयं वो प्रकाशमान है, एक शक्ति है। लेकिन जब हम उसे व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो वो योग का सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। जब हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो भगवान को हम ईश्वर कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन जब हम व्यक्तिगत रूप में ना देखें तो वो एक चेतना है, एक प्रकाश है और प्रेरणा, एक बल है। इसी श्रद्धा से जिज्ञासु को अपने योग शुरू करना होगा, इन दोनों में से एक को चुन लेना होगा कि भगवान क्या है। भगवान प्रकाशमान है, शक्ति है, चेतना है और साथ में भगवान ईश्वर है, योग का सर्वज्ञ है। इसी श्रद्धा से जिज्ञासु को अपना योग शुरू करना होगा। योग में कामना एक बाधा है। अब योग में कौन सी बात आती है, इच्छा कामना, इसको इसका रूपांतर करना होगा, सब्लिमेट करना होगा इसको। कामनाएं तो जाएंगी नहीं, इच्छा तो बनी रहती, क्योंकि मनुष्य के पास मन भी है, बुद्धि भी है, इसलिए वो कामनाएं भी आती जाती रहती है। लेकिन हमने वो कामना जो हम संसार के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, वो कामना को हमने सब्लिमेट करके भगवान की ओर ले जाना है। हमारी कामना होनी चाहिए कि भगवान मेरी एकमात्र इच्छा कि आप मुझे मिले, मुझे आपसे मिलना ही है, बस वो ही मेरी कोई इच्छा है, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। लोक हित की कामना करनी चाहिए, एक तो अपनी हित की कामना होगी कि भगवान आप मुझे चाहिए, और दूसरी कामना साधक को क्या करनी चाहिए कि हे भगवान मेरे द्वारा किसी का भला हो जाए। उसे व्यक्तिगत अध्यात्म के लाभ की कामना भी त्याग देनी चाहिए। ऐसा साधक जो आत्मनिवेदन पूर्ण रूप से करता है या करना चाहता है, उसको अपना व्यक्तिगत लाभ छोड़ देना चाहिए। कौन सा लाभ, अध्यात्मिक, दूसरे लाभ तो छोड़ना ही है, धन के या संसार के, लेकिन यहाँ तक कि मेरा कल्याण नहीं, समस्त जग का कल्याण हो, यदि विचार हृदय एवं संकल्प पर हमारी एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी, या भीतरी कामना भगवान के विधान के अधीन हो जाएगी तथा अहम मिट जाएगा, तो हम पूर्ण रूप से योगी बन सकते हैं। भगवान हमारी एकमात्र काम्य वस्तु होनी चाहिए। जैसे हमने कि हमारी क्या कामना होनी चाहिए, अर्थ न धर्म न काम होती, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म आम पद ये वरदान नाम। संत लोग क्या मांगते हैं, न धन, यहाँ तक मुक्ति भी नहीं मांगते, कहते हैं भगवान मुझे आप ही चाहिए। भगवान हमारी एकमात्र काम्य वस्तु होनी चाहिए। उस काम्य वस्तु पर हमारी एकाग्रता जितनी शक्तिशाली और पूर्ण होगी, उतना ही पूर्ण होगा हमारा समर्पण। अच्छा, हमने कामना तो कर ली कि भगवान ने आप ही चाहिए, लेकिन साथ में क्या करना है कि हमने अपने मन को उसी कामना पर, भगवान पर ही काबू करना है, ना कि ये कही तो भगवान पर किया, फिर सोने चांदी पे आ गए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, रिश्तेदार, मतलब सारी कामना शुरू कर दें, तो फिर हमारा योग पूर्ण सिद्ध नहीं होगा। जितना शक्तिशाली हमारी एकाग्रता होगी उस भगवान पर, उतना ही हमारा योग भी सिद्ध हो जाएगा। हमारा समर्पण जो अपने भगवान के प्रति किया गया है, वही निवेदन है। क्या है, जो हम अपना समर्पण कर देते हैं भगवान तू ही मेरा, मैं तेरा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न धन चाहिए न कामना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तू ही चाहिए। जब हमारे मन में ऐसी एकाग्रता आएगी तो हम सर्वत्र सब जगह सब में भगवान के दर्शन करने लगेंगे। जब ये इच्छा आएगी कि मुझे संसार की छोड़ी नहीं चाहिए, मुझे एक ही इच्छा मेरे मन में वो है आपके मिलने की, आपके प्रति मेरा आत्म निवेदन संपूर्ण हो जाए, तो फिर क्या होगा, जब तो हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जब हम सब में भगवान के दर्शन करेंगे सब जगह हमेशा, तो फिर क्या होगा, हमें सब में ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तब हम बड़े आनंदित हो जाएंगे, हमें चप्पे चप्पे पर भगवान के दर्शन होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आत्म निवेदन का कुछ विषय आपको बताया, और अब मैं कल आपको इसी आत्म निवेदन के विषय में अगला प्रसंग बताऊंगी। जय माता दी, गीता।